हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पहले तो युग ने तेज सिंह राणावत के यहाँ डिनर पर आने से मना कर दिया था, पर अचानक ही उसने शाम के वक्त उन्हें डिनर के लिए हाँ कह दी थी। राणावत फैमिली काफी जोरों शोरों से युग और कृषा के लिए डिनर की तैयारी में जुट गई, तो वहीं होटल रूम में युग और कृषा साथ में थे। युग ने कृषा की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मैंने डिनर के लिए हाँ तो कह दी है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं उसी टाइम तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। युग अपनी तरफ से उन्हें डिनर के लिए मना कर चुका था, लेकिन कृषा को जब किसी के इनवाइट करने की बात पता चली तो उसने युग को हाँ कहने की जिद की। वो बाहर घूमना चाहती थी। कृषा ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेडिसिन लेने के बाद मुझे ठीक लग रहा है, वैसे भी मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा था। बाहर जाने का मन कर रहा था तो मुझे बोल देती, हम दोनों किसी अच्छी जगह पर चलते। तुम्हें डिनर भी करना था तो ये होटल बेस्ट है। मैं अभी मिस्टर राणावत को मना कर देता हूँ, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, कहकर युग ने अपना मोबाइल उठाया। वो मना करता उससे पहले कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृषा ने युग को रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जाना, तुम मेरी चॉइस की कोई भी डिश ऑर्डर नहीं करते हो और सुबह से मैं फीका खाना खाकर थक गई हूँ, मुझे कुछ स्पाइसी और अच्छा खाना है। जब से युग को कृषा की तबीयत खराब होने का पता चला था, तब से वो उसके लिए बस हेल्दी फूड ही ऑर्डर कर रहा था, ताकि उसके पेट पर ज्यादा प्रेशर न पड़े और उसे दर्द महसूस न हो। युग ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय घड़ी में टाइम देखा और फिर कृषा की तरफ देखकर बोला, थोड़ी देर बाद हमें डिनर के लिए निकलना है, मैंने उन्हें हाँ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी, मैं तुम्हें खुद रेडी करूँगा। एंड वन मोर थिंग, वहाँ तुम कुछ भी उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं खाने वाली। कृषा को सब समझाने के बाद युग वहाँ से जाने को हुआ। तभी कृषा ने युग का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया। युग उसे कुछ कहता उससे पहले कृषा ने उसकी गोद में अपना सिर रख लिया। फिर उसने युग की तरफ देखकर कहा, तुम मेरी केयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुस्सा करते हो तो बिल्कुल डेविल लगते हो। मैं डेविल ही हूँ और मुझसे बचकर रहना, युग ने सिर हिलाकर कहा और फिर धीरे धीरे कृषा के बालों में हाथ घुमाने लगा। कुछ ही देर में कृषा को नींद आ गई और युग एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। कृषा दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान थी जिसकी युग इतनी केयर कर रहा था और इस वक्त वो उसकी गोद में सिर रखकर लेटी थी। वरना आज से पहले अगर कोई युग की मर्जी के खिलाफ उसके क्लोज आने की कोशिश करता तो ये युग को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस चक्कर में उसने काफी बार कुछ लड़कियों की जान भी ले ली थी, क्योंकि वो सेड्यूस करने के लिए उसके करीब आई थी। युग भी बेड के हेडरेस्ट पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके लेट गया। उसकी अंगुलियां अभी भी धीरे धीरे कृषा के बालों के चल रही थी। हरलीन काफी दिनों बाद एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटी थी। उसके आते ही शब्द ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया था। एक्चुअली वो सारा को हरलीन से मिलवाना चाहता था। हरलीन लगभग 7 बजे के करीब शब्द के घर पर पहुंची। शब्द और सारा उनके आने की प्रेपरेशन कर रहे थे, दोनों खुद ही उनके लिए खाना बना रहे थे। सारा को कुकिंग का काफी शौक था, इसमें शब्द उसका बखूबी साथ निभा रहा था। जैसे ही घर की डोरबेल बजी, शब्द ने अपना एप्रन निकाला और तेज कदमों से चलकर दरवाजे की तरफ गया। जैसा कि उसने सोचा था, सामने हरलीन थी और हरलीन को देखते ही वो उसके गले लग गया। फाइनली हमारे घर की सबसे मेन मेंबर आ गई है, मैंने आपको बहुत मिस किया बुआ, बोलते हुए शब्द हरलीन से अलग हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट और खुशी झलक रही थी। शब्द की बात सुनकर हरलीन ने मुस्कुराकर जवाब में कहा, चलो बातें बाद में करना, पहले मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने हमारे घर के एंजल से प्यार करके अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। वैसे तो मैं युग की रिसेप्शन पार्टी में ही उसे देख चुकी हूँ, लेकिन ऑफिशियली हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, बोलते हुए हरलीन अंदर आ गई। तब तक सारा भी अपना एप्रन निकाल चुकी थी। सारा हरलीन के पास आई और उनके पैर छूने लगी, लेकिन हरलीन ने उसके ऐसा करने से पहले ही उसे गले लगा लिया। सारा से गले लगे हुए हरलीन का चेहरा शब्द की तरफ था। उसने थम्स अप का इशारा किया और फिर सारा से अलग होकर कहा, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है एंड डोंट वरी, मैंने हाँ कह दिया है तो ना कहने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। वैसे तुम्हें विशाल भैया और प्रतीक्षा भाभी को भी यहाँ बुला लेना चाहिए था, मैंने इसे कहा था कि पूरी फैमिली को इन्वाइट करते हैं, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं, सारा ने जवाब दिया। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए शब्द ने कहा, सबको बुला तो लूंगा लेकिन सब खुश नहीं होंगे। चाचा चाचा को मैंने बोला था लेकिन वो किसी और गैदरिंग में गए हुए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता हम दोनों को साथ देखकर कोई खुश होगा भी। हरलीन समझ गई थी कि शब्द का इशारा साफ तौर पर युग की तरफ था। उसके पास सारा को नापसंद करने की वजह भी थी। शब्द का उतरा हुआ गहरा देखकर हरलीन ने उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, उसे भी मना लेंगे। रुको, मैं उसे कॉल करके अभी यहाँ बुलाती हूँ। राणा फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि युग इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। वैसे भी वो ज्यादातर टाइम अपने फ्लोर पर बिताता था। अगर बाहर जाता भी था तो प्राइवेट लिफ्ट यूज करता था। इस वजह से किसी ने उसकी और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हरलीन ने इसी वक्त युग को कॉल किया और फोन स्पीकर पर करके कहा, कहाँ हो तुम, अभी इसी वक्त शब्द के घर पर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एट मुंबई एंड सेकंड थिंग अगर मुंबई में होता भी तो मुझे सारा चौधरी के साथ फैमिली डिनर करने का कोई शौक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। युग ने सीधे सीधे मना कर दिया। युग को बिना कहे ही सब पता था। ये देखकर उन तीनों को ही हैरानी हुई। कोई उसे कुछ कहता उससे पहले सारा जल्दी से बोल पड़ी, कहाँ हो तुम, और तुम कृषा को अकेले छोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते, ओके? तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी जान को खतरा है। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैंने कृषा को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम? सारा को कृषा की बहुत केयर थी और जब उसे पता चला युग मुंबई में नहीं है तो वो गुस्से में उस पर बिफर पड़ी। सारा बोल रही थी तभी युग ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कृष मेरे साथ है और मेरे होते हुए तुम्हें उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। अब बुआ तुम्हारे घर पर आई है तो अच्छे से उनका वेलकम करना। वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बुआ को इम्प्रेस कर दिया तो क्या पता वो तुम्हारी शादी शब्द से करवा ही दे। युग की बात सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे कोई जवाब दे पाती उससे पहले कॉल कट होने का साउंड आया। शब्द और हरलीन मुस्कुराते हुए सारा की तरफ देख रहे थे। युग से इस तरह झगड़ा कोई नहीं करता था। बदतमीजी से बात करते हुए तो बिल्कुल नहीं। लगता है इनका रिश्ता भी काफी खास होने वाला है। अब तो मुझे ये और भी पसंद आ गई, हरलीन ने दबी आवाज में शब्द से कहा। शब्द ने इशारे से सारा को सब कुछ भूल जाने को कहा और फिर वो दोनों मिलकर हरलीन की खातिरदारी में लग गए। वहीं दूसरी तरफ जब हरलीन का कॉल आया था तब युग कृषा के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा था। वो जानता था कि इस समय कृषा को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट की जरूरत है। यहाँ आने से पहले उसने कृषा के लिए कैजुअल्स और पार्टी वेयर भी सिलेक्ट किए थे। इसलिए डिनर पर जाने से पहले युग ने डिजाइनर को बुला रखा था और काफी सारी ड्रेसेस देख रहा था।
कृषा उस वक्त वॉशरूम में थी। युग ने उसके लिए कैजुअल बैगी पैंट्स और लॉन्ग स्लीव्स का वूलन क्रॉप टॉप सिलेक्ट किया था ताकि कृषा को ठंड ना लगे। कपड़े सिलेक्ट करने के बाद युग ने डिजाइनर को भेज दिया, लेकिन जब कृषा ने बाहर आकर युग के सिलेक्ट किए हुए कपड़े देखे तो वो उसे घूर कर देखने लगी। कृषा ने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे नहीं ले जाना था तो साफ साफ मना कर देते, ऐसे कपड़े पहनकर मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे ऐसे लग रहा है किसी पार्क में लेकर जा रहे हो, कम से कम अच्छी ड्रेस तो सिलेक्ट करते। जो भी सिलेक्ट किया है तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से ही किया है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अगर तुम जिद करोगी तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मेंस्ट्रुअल्स चल रहे हैं या नहीं, युग ने सख्त आवाज में कहा। कृषा ने आगे कुछ नहीं कहा। युग जिस हिसाब से बात कर रहा था उससे साफ था कि वो कृषा की नहीं सुनने वाला है। ऊपर से उसने जो धमकी दी थी वो वैसा कर सकता था। ऐसे टाइम में कृषा नहीं चाहती थी कि युग उसके कपड़े चेंज करे। कृषा ने गुस्से में युग के हाथ से कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई तो उसने देखा युग तैयार हो चुका था और उसने बॉटल ग्रीन कलर का सूट पहना था जिसने वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। युग को देखने के बाद कृषा ने खुद को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उसकी पर्सनल असिस्टेंट कहीं जाने के लिए तैयार हुई हो। कृषा ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, तुम अकेले ही चले जाओ। खुद तो ऐसे हैंडसम से तैयार हो गए जैसे शादी करने जा रहे हो और मुझे ऐसे तैयार किया है जैसे तुम्हारी शादी में मुझे माला उठाकर चलना हो, कृषा बोले जा रही थी जबकि युग उसको गौर से देख रहा था। कृषा को अपने कपड़े भले ही पसंद नहीं आए हों लेकिन युग को उन कपड़ों में कृषा बहुत ही क्यूट लग रही थी। युग जो काम करता था वहाँ उसने अक्सर ऐसी ही लड़कियाँ देखी थी जो खुद को एक्स्ट्रा ही मेंटेन करके रखती थी। उसे ऐसी लड़कियाँ थोड़ी कम पसंद थी जो खुद को एनी टाइम परफेक्ट दिखाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करती रहती थी। कृषा को इस मैसी लुक में देखकर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। तभी कृषा बोलते हुए चुप हो गई। उसने देखा युग उसे एकटक घूरकर देख रहा है। वो उसे कुछ पूछती उससे पहले युग ने उसे कमर से पकड़ा और उसके होठों पर किस करने लगा। युग ने बीच में किस ब्रेक करके धीरे से कहा, आज से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी, बोलते हुए वो तेज सांसें ले रहा था और फिर उसने फिर से कृषा के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। कृषा ने जल्दी से खुद को युग से अलग किया और चिढ़ते हुए कहा, हद है यार, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो, खुद तो अच्छे से तैयार होकर रहते हो। मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब तुम भी मेरी तरह कैजुअल्स पहनोगे। कृषा बच्चों की तरह जिद पर अड़ गई थी। युग घर पर भी कैजुअल्स नहीं पहनता था, सिर्फ रात के वक्त सोते टाइम वो कैजुअल्स में रहता था। लेकिन कृषा जिस हिसाब से जिद पकड़कर बैठी थी, मजबूरन युग को अपने कपड़े चेंज करने जाना ही पड़ा। युग जब ड्रेस चेंज करके आया तो कृषा विक्ट्री स्माइल के साथ उसे देख रही थी। प्रथम चरण समाप्त। राणावत के घर गैदरिंग कल होगी। आई नो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार का फल मीठा होगा। मिलते हैं अगले पाक पर। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और एक थैंक्स उन स्पेशल रीडर्स के लिए जो रोज पढ़कर समीक्षा करते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपको नहीं पता पर आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।